طارق چھتاری کی کہانی۔ نیم پلیٹ۔ کیا نام تھا اس کا؟ اف، بالکل یاد نہیں آ رہا ہے۔ کیدارناتھ نے اپنے اوپر سے لحاف ہٹا کر پھینک دیا اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا ہو گیا ہے مجھے، ساری رات ہو گئی، نیند ہی نہیں آ رہی ہے۔ ہوگا کچھ نام وام، نہیں یاد آتا تو کیا کروں، لیکن نام تو یاد آنا ہی چاہیے، آخر وہ میری بیوی تھی، میری دھرم پتنی۔ انہوں نے پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ 75 سالہ کیدارناتھ کے ماتھے کی بے شمار جھریاں بوڑھی ہتھیلی کے نیچے دب کر پھڑپھڑانے لگیں۔ سرلا کی ماں، ان کے منہ سے بے ساختہ نکل پڑا۔ اف، وہ تو ٹھیک ہے، مگر کچھ نام بھی تو تھا اس کا۔ کیا نام تھا؟ اس کے نام کا پہلا اکثر، ہاں ہاں کچھ یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے پیر پلنگ کے نیچے لٹکا دیے اور لائٹ آن کرنے کے لیے دیوار میں لگے سوئچ کی طرف بڑھے۔ اس کے نام کا پہلا اکثر کے، نہیں نہیں، ہاں یاد آ گیا۔ ان کی جھریوں سے بھرا پوپلا منہ مسکرانے کے لیے تیار ہی ہو رہا تھا کہ کھانسی کا ایک ٹھسکا لگا اور پھر وہ بھول گئے کہ وہ اکثر کیا تھا۔ کمرے میں چاروں طرف روشنی پھیل چکی تھی۔ 2:30 بجنے کو ہیں۔ ان کی نظر ٹائم پیس پر پڑ گئی۔ ٹائم پیس، ہاں پیس، سا، ارے ہاں سا ہی تو تھا اس کے نام کا پہلا اکثر۔ سا نہیں، یہ تو سرلا کی ماں، پھر سرلا کی ماں، آخر نام بھی تو کچھ تھا اس کا۔ کیدارناتھ نے جھنجھلا کر سرہانے رکھی چھڑی کو اٹھایا، گلے میں کس کے مفلر لپیٹا اور بار بار چھڑی کو فرش پر پٹکنے لگے۔ پھر دونوں ہاتھوں میں چھڑی کو جکڑ کر اس طرح سر کے قریب لائے جیسے اس کے ہتھے سے اپنا سر پھول ڈالنا چاہتے ہوں۔ تعجب ہے اپنی بیوی کا نام بھی بھول گیا، اسے مرے ہوئے بھی تو 40 برس گزر گئے ہیں۔ 3 سال کا عرصہ ہوتا ہی کتنا ہے، صرف 3 سال ہی تو اس کے ساتھ رہ پایا تھا میں۔ وہ خالی خالی نظروں سے کمرے کو گھور رہے ہیں۔ پلنگ، میز، کرسی اور الماری کتابیں۔ الماری کتابوں سے بھری پڑی ہوگی، الماری کے پٹ بند ہیں۔ وہ پلنگ کی جانب بڑھے اور پھر الماری کی طرف مڑ گئے، دروازہ کھولا۔ الماری خالی تھی، نہ اس میں کتابیں تھیں اور نہ خانے۔ ارے اس میں تو پچھلی دیوار بھی نہیں ہے۔ وہ لرز گئے اور گھبرا کر ایک پاؤں اس کے اندر رکھ دیا، پھر دوسرا پاؤں۔ اب وہ دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ سب کچھ خالی تھا، ان کے ذہن کی طرح۔ وہ سمت بھول گئے تھے اور الماری کے بجائے باہر جانے والا دروازہ کھول بیٹھے تھے۔ باہر سڑک پر کوہرا جمع ہوا تھا، کھمبوں کے بلب مدھم دیوں کی طرح ٹمٹما رہے تھے۔ سنسان سڑک پر انہیں لگا کہ یکایک بھیڑ امڑ آئی ہے، چاروں طرف شور ہو رہا ہے، باجے کے شور سے کان پھٹے جا رہے ہیں۔ دور کوہرے میں چھپی ہوئی ڈولی، سرخ جوڑا پہنے دلہن، دلہن مسکرا رہی ہے۔ سڑک پر ایک پتھر کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، انہیں ٹھوکر لگی اور لڑکھڑا کر کھمبے سے جا ٹکرائے۔ بہت زور سے دھکا دیا تھا محلے بھر کی لڑکیوں نے۔ اور پھر دروازہ بند۔ کیا نام ہے تمہارا؟ نام معلوم ہوتے ہوئے بھی اس کا نام پوچھا تھا انہوں نے۔ وہ شرما گئی تھی اور گھٹنوں میں منہ چھپا لیا تھا۔ انہوں نے پھر پوچھا تو اس نے آہستہ سے اپنا نام بتایا تھا۔ کیا بتایا تھا اس نے؟ اف، بالکل یاد نہیں۔ اور وہ چھڑی کو زمین پر پٹکتے ہوئے تیز تیز قدموں سے چل پڑے۔ انہیں کہاں جانا ہے پتا نہیں، پھر بھی وہ چلتے رہے۔ اور اب وہ اپنے گھر سے بہت دور نکل آئے تھے۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ کیلاش نگر، ہاں شاید وہی ہے۔ آگے دائیں طرف ان کے دوست شرما جی کی کوٹھی ہے، باہر گیٹ پر نیم پلیٹ لگی ہے۔ ستیہ پرکاش شرما، وہ ان کے دفتر کے ساتھی تھے، گزرے ہوئے کئی برس ہو گئے۔ اچانک کیدارناتھ ٹھٹکے اور رک گئے۔ ارے یہی تو ہے شرما جی کی کوٹھی؟ ہاں بالکل یہی ہے، وہاں لگی ہے ان کے نام کی پلیٹ۔ کیدارناتھ کو کوہرے کی دھند میں ایک تختی نظر آئی۔ شرما، انہوں نے پڑھا، رام پرکاش شرما۔ رام پرکاش؟ نہیں، ان کا نام تو ستیہ پرکاش تھا۔ انہوں نے غور سے دیکھا، رام پرکاش شرما ایڈوکیٹ، صاف صاف لکھا تھا۔ انہیں یاد آیا کہ ایک روز شرما جی نے کہا تھا میرا بیٹا رام پرکاش ایڈوکیٹ ہو گیا ہے۔ اچھا تو اپنے باپ کے نام کی پلیٹ اکھاڑ کر، کھٹ سے کوئی چیز گری۔ انہیں لگا کہ ان کے ذہن سے کوئی چیز ٹوٹ کر قدموں میں آن گری ہے۔ وہ سہم گئے اور مجرم کی طرح گردن جھکا لی۔ یہ کسی کے نام کی پلیٹ تھی، مگر ایک حرف بھی صاف نہیں، سب کچھ مٹ چکا ہے۔ ان کے جسم میں زنزناہٹ سی ہونے لگی، لاغر ٹانگیں جو ابھی بھی کانپ رہی تھیں۔ پیاسے ہرن کی طرح کلانچے مارنے کو بیتاب ہو اٹھیں۔ وہ بھاگ رہے ہیں، نہیں آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، یا رینگ رہے ہیں، یا کھڑے کھڑے ہی، یہ تو پتا نہیں۔ مگر اب وہ اپنے گھر سے کئی میل دور سرلا کے گھر کے بہت قریب آن پہنچے ہیں۔ سرلا سے اس کی ماں کا نام پوچھ ہی لیں گے۔ सरला को अपनी माँ का नाम याद होगा, क्यों नहीं, कोई माँ का नाम भी भूलता है क्या? पार्वती देवी, उनकी माँ का नाम पार्वती देवी था। उन्हें 75 साल की उम्र में भी अपनी माँ का नाम याद है। पार्वती देवी की जय। बचपन में वो अपने बाबा के साथ बैठे पूजा कर रहे थे। बाबा, अम्मा का नाम भी तो पार्वती देवी है। हाँ बेटे, यही पार्वती देवी हैं जिनके नाम पर तुम्हारी अम्मा का नाम रखा गया है। और उस रोज से वो आज तक रोजाना पार्वती देवी की पूजा करते हैं और जय बोलते हैं। माँ तो भगवान का रूप होती है, फिर भला सरला कैसे अपनी माँ का नाम भूली होगी। केदारनाथ का दिल अंदर से इतना खुश हो रहा था कि हाथ पांव फूलने लगे। रफ्तार में धीमापन आ गया, मगर वो अपने बूढ़े जिस्म को धकेलते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। बाबूजी, आज इतने सवेरे आप इधर? सरला ने किसी सोच में डूबे हुए केदारनाथ को चाय की प्याली देते हुए पूछा। बूढ़े आसमान की गोद से नए सूरज का गोला झांक रहा है। केदारनाथ के पंजों की उंगलियां सर्द होकर सुन पड़ चुकी हैं, जैसे उनमें गोश्त है ही नहीं, और वो अंदर से बिल्कुल खाली, बिल्कुल खोखली हो चुकी हैं। परिंदे उनके सर पर मंडलाते मंडलाते सरला के मकान के ऊपर जा बैठते हैं और वो सरला के मकान के बाहर पता नहीं कब से खड़े खड़े थक चुके हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आते जाते लोग देखकर क्या सोचेंगे, अब तो दिन चढ़े काफ़ी देर हो गई है, सरला सोकर उठ गई होगी, अंदर चलना चाहिए। लेकिन क्या वाकई सरला ने अब तक अपनी माँ का नाम याद रखा होगा? शर्मा जी के बेटे ने अपने बाप के नाम की प्लेट उखाड़ कर खट से कोई चीज़ गिरी। उन्हें लगा कि उनके जहन से कोई चीज़ टूट कर कदमों में आन गिरी है। धुंधले धुंधले हरूफ उभरने लगे और उनकी आंखों में अंधेरा छा गया। अंधेरी रात, कोहरे से भरी हुई सर्द रात, बेशुमार कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें, कई आवारा कुत्ते उनके पीछे लग गए हैं। वो कुत्तों से बचने के लिए मिल्टन पार्क में घुस जाते हैं। मिल्टन पार्क, अब तो उसका नाम गांधी पार्क हो गया है। गांधी पार्क हो या मिल्टन पार्क, है तो ये वही पार्क जहां वो शादी के 2 दिन बाद उसे लेकर आए थे। पार्क की बारादरी टूट कर खंडर बन गई है। टूटी हुई बारादरी के पत्थरों के नीचे से होती हुई उनकी नज़रें 40 बरस पुरानी बारादरी में घुस जाती हैं। आओ यहाँ बैठो, कितनी खूबसूरत हैं ये मेहराबें। वो दोनों संगमरमर के सुतून से कमर टिकाकर बैठ जाते हैं और फिर वो दुनिया से बेखबर बहुत देर तक उसके पास बैठे रहे, महीनों बरसों, कि अचानक उनकी बेटी सरला ने उन्हें चौंका दिया। बाबूजी, आप चुप क्यों हैं, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटी, मैं सोच रहा था आज इतने सवेरे, असल में मैंने सोचा जोगिंदर के दफ्तर जाने से पहले ही पहुंच जाऊं तो अच्छा है। बाबूजी, आज तो इतवार है। ओह हाँ, आज तो इतवार है, क्या करूं बेटी, रिटायर होने के बाद दिन तारीख याद ही नहीं रहते। वो दिल ही दिल में सोचने लगे, दिन तारीख क्या, अब तो बहुत कुछ याद नहीं रहा। इतने में जोगिंदर भी आंखें मसलते हुए आए और केदारनाथ को प्रणाम करके सोफे पर बैठ गए। बाबूजी, इतने सवेरे, सब ठीक है ना? मेरे सुबह जल्दी आ जाने पर ये लोग इतना जोर क्यों दे रहे हैं? ज़रूर मेरे अचानक आने से ये डिस्टर्ब हुए होंगे, मुझे चले जाना चाहिए अभी। केदारनाथ को खामोश बैठा देखकर सरला बोल पड़ी, अरे बाबूजी तो भूल ही गए थे कि आज इतवार है, इसीलिए तो इतनी जल्दी, आज इतवार है और मैं इस तरह बगैर बताए यहाँ चला आया हूँ, हो सकता है इन दोनों का कोई प्रोग्राम, अब मेरी वजह से, हफ्ते में छुट्टी का एक ही दिन तो मिलता है इन लोगों को, मगर मैं भी तो रोज़ रोज़ नहीं आता, घर से चल पड़ा था, बस चलता रहा, और चलते चलते जब सरला के घर के करीब आ गया तो सोचा मिलता चलूँ, क्या ये लोग आज मेरे लिए अपने प्रोग्राम नहीं छोड़ सकते? केदारनाथ की आंखों में आंसू छलक आए हैं, कमबख्त बुढ़ापे में आंसू भी कितनी जल्दी निकल आते हैं। वो आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि सरला ने उनकी आंखों में झांक कर देखा, ये इस तरह क्या देख रही है, कहीं सब कुछ समझ तो नहीं गई, क्या समझेगी, ये कि मैं अपनी बीवी का नाम भूल गया हूँ और रात भर जागता रहा हूँ, या ये कि मैं रो रहा हूँ। बेटी, आज मुझे जोगिंदर से कुछ काम था। बाबूजी, मुझसे? जोगिंदर ने हैरतजदा होकर पूछा। हाँ यूं ही, कोई ख़ास बात नहीं थी। फिर वो लॉन की तरफ झांकने लगे, आज बहुत सर्दी है, तुम्हारे लॉन में तो सवेरे ही धूप आ जाती है, सरला ने लॉन की तरफ देखते हुए कहा। हाँ बाबूजी, अभी तो धूप में तेजी भी नहीं आई और ओस भी बहुत है, पूरा लॉन गीला, वो कह रही थी कि जोगिंदर बीच में बोल पड़े। बाबूजी, अभी कुछ काम के सिलसिले में आप कह रहे थे, क्या ये लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी से काम बताकर चलता बनूं ताकि इनके प्रोग्राम डिस्टर्ब ना हों? केदारनाथ खांसने लगे और काफ़ी देर तक खांसते रहे। वो खांस रहे थे और सोचते जा रहे थे कि अब क्या कहूँ, कि बगैर सोचे समझे ही बोल पड़ा। बेटे तुम्हें नाम याद रहते हैं?
कैसे नाम बाबूजी?
वैसे मैं हमेशा नाम याद रखने में कमज़ोर रहा हूँ, इसीलिए हिस्ट्री के पर्चे में मेरे नंबर बहुत कम आते थे।
अब क्या पूछूँ, क्या सरला से यही सवाल करूँ?
मगर ये तो बड़ी बेतुकी बात होगी। अगर सरला खुद ही बोल पड़े कि बाबूजी मुझे नाम याद रहते हैं, तो जल्दी से पूछ लूँ कि बताओ तुम्हारी माँ का क्या नाम था।
केदारनाथ ने हसरत भरी नज़रों से सरला की तरफ देखा, लेकिन वो खामोश बैठी रही और फिर उठकर किचन की तरफ चल दी। सूरज चढ़े काफ़ी देर हो चुकी थी, धूप में भी तेज़ी आती जा रही थी। लॉन की हरी घास पर जमे हुए शबनम के कतरे अपना वजूद खो चुके थे। केदारनाथ ने अपने जिस्म पर चढ़े हुए गर्म कपड़ों को इस तरह टटोला जैसे वो ढूंढ रहे हों कि उन कपड़ों के अंदर जिस्म है भी या नहीं। दोपहर का खाना तैयार था, लेकिन अभी तक सरला से उसकी माँ का नाम पूछने का मौका नहीं मिल पाया था। सरला सुबह से खाना तैयार करने में लगी हुई थी। केदारनाथ बाहर धूप में जाकर बैठते तो कभी अंदर आकर बरामदे में टहलने लगते। कभी जोगिंदर से इधर उधर की बातें होती और कभी सरला आती तो इस मौके की तलाश में रहते कि जरा जोगिंदर उठकर जाएं और वो अकेले में सरला से उसकी माँ का नाम पूछ लें। अब दोपहर के खाने का वक्त हो चुका है, खाने में बाद में बात निकलेगी, तब तो पूछ ही लूँगा, उन्होंने सोचा और मुतमइन हो गए। खाने की मेज़ सज चुकी है, सरला ने कई तरह की सब्जियाँ बनाई हैं, खाना बहुत लजीज है। आज बहुत दिनों के बाद अपनी बेटी के हाथ का खाना मिला है। नौकर के हाथ का खाते खाते उनका दिल भर गया था। सरला की माँ के हाथ का जायका तो अब उन्हें याद भी नहीं, उसका नाम भी तो याद नहीं। उनका जी चाहा कि जल्दी से पूछ लें, बेटी तुम्हारी माँ का क्या नाम था?
अरे ये क्या, अगर इस तरह वो कोई सवाल करेंगे तो ये दोनों क्या सोचेंगे? दोनों कहकह मारकर हंस पड़ेंगे। केदारनाथ खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगे कि कहीं भूल कर ये सवाल उनके मुंह से ना निकल पड़े। किससे पूछूं, कमबख्त खुद ही मेरे जहन में आ जाए तो पूछना ही क्यों पड़े। उन्होंने भवें सुकोड़ी, पेशानी पर बेशुमार बल पड़ गए, फिर आंखें बंद कर लीं और अपने जहन से जूझने लगे। आज सरला का बेटा नजर नहीं आ रहा है, शायद उसे अपनी नानी का नाम याद हो, बातों बातों में उससे तो पूछ ही लूंगा। सरला आज तुम्हारा बेटा?
हाँ पिताजी, मैं तो बताना भूल ही गई, बीए पास करने के बाद उसने कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी थी, कल से उसके इम्तिहान हैं, दो दिन पहले ही दिल्ली चला गया है।
ओ अच्छा, तो घर पर नहीं है? केदारनाथ एक ठंडी सांस लेकर फिर खाने में मसरूफ हो गए। खाना खत्म हो गया और केदारनाथ को अपनी बीवी का नाम याद नहीं आया। खाने के बाद चाय और फिर देखते ही देखते शाम हो गई। केदारनाथ बगैर नाम पूछे ही वहाँ से उठ पड़े, घर लौटने के लिए बस पकड़ी। अब उनके जिस्म की सारी रगें ढीली पड़ चुकी थीं। हर एक शख्स को देखकर उन्हें लगता कि उसे ज़रूर मेरी बीवी का नाम मालूम होगा, वो हर एक से पूछना चाहते हैं, मगर कोई शख्स ना तो उनकी तरफ मुतवज्जा होता और ना ही कुछ पूछने के लिए उनके होंठ खुलते। सफ़र जारी रहा और फिर अचानक एक झटके के साथ बस रुकी। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका और उतरने के लिए सीट से उठकर खड़े हो गए। कमरे में चारों तरफ अंधेरा है, वो बगैर रोशनी किए बिस्तर पर ढेर हो गए। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। केदारनाथ को महसूस हुआ कि दीवारें उनकी तरफ खिसकती चली आ रही हैं। उन्होंने आंखों पर जोर देकर दीवारों की तरफ देखा तो उनकी आंखों में जलन होने लगी। पूरे कमरे में धुआं भर गया था। उठकर लाइट जला दी जाए, उन्होंने सोचा, मगर रोशनी में तो उन्हें नींद ही नहीं आती, अंधेरे में भी कब आती है। अब उनकी आंखें शोलों की तरह दहकने लगी थीं, जिस्म से भी आग निकलने लगेगी, आग की लपटें बहुत तेज हो गई हैं। सरला की माँ की चिता जल रही है, रोशनी बहुत तेज है और उन्हें नींद नहीं आ रही है, तो फिर आंखें नींद से बोझल क्यों होती जा रही हैं? जगह जगह से जिस्म गल गया है, वो जिधर करवट लेते हैं उधर ही से शदीद दर्द की लहर उठती है। उनके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे होते जा रहे थे कि अचानक जहन से कोई चीज निकलकर पलंग के नीचे फर्श पर जा पड़ी। केदारनाथ उठकर बैठ गए, लाइट जलाई और अलमारी खोलकर तमाम किताबें फर्श पर बिखेर दीं। एक एक करके मेज की दराज के तमाम कागजात निकाल डाले और पुराने बक्स से कुछ फाइलें निकाली, फिर दीवानों की तरह उन्हें उलट पलट कर देखने लगे। किसी कागज को पढ़ते, किसी को फाड़ कर फेंक देते और किसी को तह करके रख लेते। कमबख्त उसकी कोई चिट्ठी भी तो नहीं मिल रही है। अब केदारनाथ ने झुंझला कर किताबों, कागजों और फाइलों को नोच कर फेंकना शुरू कर दिया है। दोनों हाथ बिल्कुल शल हो चुके हैं, सांस रुकने लगी है। उन्होंने घबरा कर गले में बंधे मफलर का बल खोलना चाहा कि पता नहीं कैसे गिरफ्त और तंग हो गई, फिर एक झटके के साथ मफलर खींच लिया और बुरी तरह हांफने लगे। ढूंढने से कोई फायदा नहीं, याद करना भी बेकार है, अब कुछ याद नहीं आएगा। और वो याद करने लगे कि उनकी बीवी का क्या नाम था, शांति।
नहीं, सरोजनी नहीं, नहीं, श्रेष्ठा उफ ये भी नहीं। हजारों नाम उनके जहन में तेजी से आने लगे, फिर वो भूल गए कि वो क्या याद कर रहे थे। आज कौन सा दिन है? इतवार? नहीं, इतवार तो कल था। कल? इतवार तो उस दिन था जब वो सरला के घर गए थे, और सरला के घर गए हुए अब सदियां गुजर चुकी हैं। उनकी आंखों से जर्द रोशनाई टपक कर पूरे कमरे में फैल गई है। किताबें, कागजात और फाइलें, कुछ धुंधले धुंधले हरूफ नजर आए। शर्मा? हाँ, मेरे दफ्तर के साथी शर्मा। पूरा नाम क्या था उनका? ये भी भूल गया। और उनके बेटे का? नहीं, अब मुझे कुछ भी याद नहीं है। पार्क? कौन सा पार्क? हाँ, वही पार्क जहाँ वो खड़ी मुस्कुरा रही है। लेकिन अब तो उस पार्क का नाम भी बदल गया है। क्या है उसका नया नाम? नया ही क्या, अब तो पुराना भी याद नहीं, मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूँ। मेरी बेटी? उफ, उसका नाम भी याद नहीं आ रहा। उसके शौहर का नाम? हे भगवान, मुझे क्या होता जा रहा है, अब तो कुछ भी याद नहीं। क्या सिर्फ बीवी के नाम के लिए वो इतने परेशान हैं? नहीं, कोई और चीज़ भी है जिसे वो भूल गए हैं। क्या चीज़ है वो? वो नेम प्लेट जो बार बार उनके जहन से निकल कर गिर पड़ती है। क्या लिखा है उसमें? कुछ दिखाई नहीं देता, सब कुछ मिट चुका है। दीवारें, छत, दरवाजे और फर्श, कुछ भी नहीं है। दूर तक फैला हुआ एक बहुत बड़ा मैदान है। जमीन में जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं। सूरज का गोला फैल कर इतना बड़ा हो गया कि पूरा आसमान उसके पीछे छुप जाता है। रोशनी इतनी तेज है कि कुछ दिखाई नहीं देता कि अचानक दूर कोई बहुत छोटी सी चीज नजर आई। क्या है वो? कोई इंसान है जो अपने चारों तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहा है। उसके करीब कोई भी नहीं है, वो तन्हा है, बिल्कुल तन्हा। अरे, वो तो मेरी तरफ बढ़ रहा है और अब मेरी आंखों के इतना करीब आ गया कि उसके पीछे सारा मैदान, आसमान और सूरज का फैला हुआ गोला भी छुप गया है। कौन है ये शख्स? मैं? और उनकी आंखों के सामने खुद उनकी अपनी जात अंधेरा बन के छाने लगी। मगर मैं कौन हूँ? क्या नाम है मेरा? हैं, अब तो मैं अपना नाम भी भूल गया। वो माथे पर हाथ रखकर जोर से चीखे और बगैर रीढ़ की हड्डी वाले आदमी की तरह दोहरे होते होते अपने आप में सिमटने लगे। उन्हें लगा कि वो कई गज जमीन के अंदर धंस गए हैं। उनका दम घुट रहा है, सर बुरी तरह चकराने लगा और आंखों में नीले पीले बादल उमड़ आए। हाथ पांव सुन पड़ चुके हैं और गला रुंध गया है, जैसे कोई बहुत मोटी सी चीज उसमें अटक गई हो। कांपता हुआ हाथ उन्होंने गर्दन पर रख लिया और खंखारना चाहा, मगर उन्हें लगा कि खंखारते ही हिचकी आ जाएगी और वो मर जाएंगे। नहीं, वो बहुत जोर से चीखे। उनके हाथ की गिरफ्त गले पर खुद ब खुद मजबूत हो गई थी। धुंधले धुंधले हरूफ उभरने लगे। के उफ, लगता है दिमाग के परखचे उड़ जाएंगे और जबान कट कर दूर जा गिरेगी। उन्होंने गौर से देखा, हर्फ कुछ कुछ साफ दिखाई देने लगे थे। के दा, और फिर उन्होंने पढ़ लिया, केदारनाथ। वो खुशी से चीख पड़े और गले पर हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ गई। दिल बहुत जोर से धड़का, पूरे बदन में गुदगुदी सी होने लगी और वो लड़खड़ाते हुए पलंग पर जा पड़े। केदारनाथ, केदारनाथ, वो जोर जोर से कहने लगे, जैसे अब उन्हें सब कुछ याद आ गया हो। अपनी बेटी का, दोस्त का, उस पार्क का और अपनी बीवी का नाम, केदारनाथ। महसूस हुआ कि सारी दुनिया का नाम केदारनाथ है। फिर आहिस्ता से उठे, लाइट बुझाई और केदारनाथ, केदारनाथ कहते हुए लिहाफ में घुस गए। सुबह हुई तो उन्होंने खुद को बहुत मुतमईन महसूस किया। रात बहुत गहरी और सुकून की नींद आई थी।